वला यहज़ूब का कौलुहु, ए नबी इनकी बातें आपको गमगीन ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों से गमगीन होते थे क्योंकि इंसान थे ना, रोबोट होगा जिसको किसी की बातों का को कोई असर ही नहीं होता, लेकिन जो भी इंसान होगा चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई बात उसको गमगीन भी करेगी, कोई परेशान भी करेगी, कोई बात उसको खुश भी करेगी। तो इसी से पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे। हम ये सोच लेते हैं कि वो तो पता नहीं इंसान ही नहीं थे ना, सारे गम और सारी परेशानियां हमारे ही होती हैं, उनको तो कोई शायद चीज परेशानी भी होती थी तो उनको कोई परेशानी ही नहीं होती थी, ऐसी नहीं है बात। वो भी इंसान थे और उनको भी परेशानियां लाहक होती थी, भूख भी उनको लगती थी, प्यास भी उनको लगती थी, कोई बीमारी भी होती थी तो उसकी तकलीफ भी उनको होती थी, जख्म भी उनको लगता था तो तकलीफ पहुंचती थी। तो ऐसे ना सोच लिया करेंगे उनको कुछ होता ही नहीं था, नहीं। तो गम उनको भी लगता था, जैसे हमें फील होता है उनकी भी फीलिंग्स थी। तो उनको अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि ए नबी आप गम ना करें। से पता चलता है अल्लाह ताला के जो करीब लोग हैं उनको दुनिया में कोई चीजें गमगीन कर सकती हैं, और आपका गम असल में किस चीज का था, ये था कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं मान रहे। फलअल्लक बाखिउ नफ्सक अला आसारिहिम, हम हमेशा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला तसल्लियां देता था अपने नबी को, नबी आप अपने आप को हलाक कर देंगे इनके पीछे, अफसोस कर करके क्यों नहीं ये बात मानते। तो आप गम ना करें, जो ये बातें कहते हैं, ये जो बातें करते, फिर ठट्टा करते थे, मजाक करते थे, बातों को कि आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देते थे, तो फरमाया इन्नल इज्जत लिल्लाह जमीआ, इनकी बातें आपको गमगीन ना करनी, इसलिए कि सारी इज्जत, इज्जत का मतलब इज्जत भी होता है जो हम जिसको इज्जत कहते हैं ग्लोरी, और इज्जत का मतलब गलबा भी होता है, सारा गलबा तो अल्लाह के हाथ में है और सारी इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जो वो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि अंबिया को लोगों ने सताया, बातें की, उनसे गमजदा भी हुए, लेकिन याद रखें कि किसी के मजाक उड़ाने से या बातें करने से आपकी इज्जत कम नहीं होती, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है, इन्होंने थोड़ी इज्जत देनी है तो इज्जत मिलेगी, इज्जत तो अल्लाह ने देनी है, वो जिसको इज्जत दे दे कोई उसको जलील नहीं कर सकता, और जिसको जलील करते कोई उसको इज्जत नहीं दे सकता। अबू जहल वहां पे इज्जत वाला बना फिरता था, जलील हुआ ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बातें भी बनाई, लेकिन आपकी इज्जत ही इज्जत है। तो इस चीज से दिल थोड़ा ना किया करें, उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया, उन्होंने मेरे बारे में बातें कर दी, वो ऐसा कह रहे थे, और इतने डिप्रेस होके बैठ जाएं कि बस फिर अब वो काम करने का ही जी नहीं चाहता, और अब मैं क्या करूं, और अब वो मुझे इस तरह कहते हैं, नहीं, इन्नल इज्जत लिल्लाही जमीआ, वो समीउल अलीम, वो सुनने वाला भी है जानने वाला भी, उसको पता है किसके ऊपर कौन क्या बातें बना रहा है, वो सुन रहा है और वो जानता भी है किसके दिल पे क्या गुजर रही है, इसमें ढारस है अल्लाह की तरफ से, तसल्ली है सब लोगों को जो अल्लाह ताला के दीन पे चलने की वजह से सताए जाते हैं, उन सब के लिए ढारस है। याद रखिए, जब आप अल्लाह के प्यारे बनना चाहेंगे ना, जब आप अल्लाह को खुश करना चाहेंगे, जब अल्लाह की इताअत की तरफ आएंगे, मसलन आपने सोच लिया मैंने औलिया अल्लाह बनना है, आपने सोच लिया मैंने आज से तकवा इख्तियार करना है, मैंने आज से वो कोई काम नहीं करना जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो, और मैंने भाग भाग के वो काम करने हैं जिनमें नेकी हो, आप आज से मुत्तकी बन गए, ठीक है, अब लेवल्स तो आप अटेन करेंगे लेकिन आज से आप मुत्तकी हो गए। अब आप निकले, आपने जो शुरू किए, जो भी अपने अल्लाह की फरमाबरदारी के काम या गुनाहों से बचने का आपने जो इरादा कर लिया, अब आप जब अमली मैदान में आएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज होंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या तुम शुरू हो गई हो, ये क्या तुम्हें, बाद गिले शिकवे भी शुरू कर देंगे, तुम्हारे पास तो अब टाइम ही नहीं, तुम तो ऐसे, तुम तो इधर की हो गई हो, तुम तो एक्सट्रीमिस्ट हो गई हो, तुम तो ये हो गई हो, बहुत नाराजगियां भी होंगी, गिले शिकवे भी होंगे, बातें भी बनाई जाएंगी, मजाक भी किया जाएगा। उसके बाद आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप ये कहें कि छोड़ो सब कुछ चीज को, मैं नहीं किसी की बातें सुन सकती, मेरी दोस्तें तो मुझे छोड़ रही हैं, मेरे रिश्तेदार तो मुझसे नाराज हो रहे हैं, सबको मुझसे गिले हो गए हैं। क्या फायदा है इसका, ऐसे दिन का मैं सब चीज छोड़ती हूँ। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने ये कह दिया कि अब अल्लाह के वली बनना है। दुनिया नाराज होती है तो होती रहे, मुझे नहीं परवाह। वो गिले करें, शिकवे करें, वो मूड ऑफ करें, आई डोंट केयर। उनको अच्छा लगे या नहीं लगे मेरा ये सब कुछ करना, मैंने तो अपने अल्लाह को राजी करना। ये दूसरा रास्ता हो सकता है, सबके पास चॉइस है, वो अपने लिए क्या रास्ता चूज करते हैं। अल्लाह सुन लो, लोगों सुन लो ये बात, अल्लाह जब भी आता है ना तो अनाउंसमेंट, अब जैसे वो एयरपोर्ट पे भी एक खास किस्म की एक बेल सी होती है, वो टिंग टोंग करती है, तो फिर उसके बाद वो अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं। वो एक इस तरह मस्जिदों में कहते हैं, ख्वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, जरूरी ऐलान, वो ये है ना, ये अला है, ठीक है। अला सुन लो सारे लोगों, पहले हमें बात बताई गई, इन्ना उलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम ला, जैसे उनकी एक अनाउंसमेंट हो रही है, अल्लाह के दोस्तों को कोई नहीं खौफ और ना गम होगा। अब क्या कहा जा रहा है, सुन लो, इन्ना लिल्लाहि मन फिस्समावाति व मन फिल अर्ध, बेशक अल्लाह ही के लिए जो आसमानों में और जो जमीन में। क्या मतलब, यानी अल्लाह ही मालिक है जो आसमानों में और जमीन में, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही का इख्तियार है, सब कुछ उसका ही है। ये तुम जितने भी बने फिरे रहोगे, ये इज्जतें हमारी, ये दौलतें हमारी, ये जायदादें हमारी, ये औलादें हमारी, ये घर हमारे, ये मुल्क हमारा, ये फलां हमारा, सब कुछ तो अल्लाह ही का है, कुछ भी हमारा नहीं है, अल्लाह का है। और उसने दिया हुआ हमें कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और हमने वापस उसी के पास चले जाना, और वापस हमारी सब चीजों ने भी उसके पास चले जाना, तो किसका हुआ। लिल्लाही मीरासुस्समावाति वल अर्ध, मीरास तो उसकी है, वापिस हम मर जाएंगे फिर उसके बाद, फिर उसके पास फिर वो आ जाएंगे, अगर कोई और लेगा तो उसके बाद किसका, असल में किसका। तो अल्लाह ही का है, जब जब ये बात का यकीन दिल में आ जाए कि सब कुछ अल्लाह ही का है, अच्छा तो फिर आप मांगेंगे किससे। अगर आपको इनमें से कोई चीज भी चाहिए, आइंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास चाबियां हैं गैब की, जितने भी खजाने हैं, जितनी भी इज्जतें हैं, जितनी भी दौलतें हैं, जितनी भी शिफा है, जितनी भी सेहत है, औलाद है, जो भी है, सब कुछ के खजाने उसके पास हैं, और इंदहु मफातिह, उसके पास चाबियां हैं, चाबी वो खोलेगा तो आपको कुछ मिलेगा, वो ना दे तो कोई नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं समझ आती, उसका है सारा कुछ, आप जाके कहीं और से मांग रहे होते हैं, वो दे देगा, वो दे देगा मेरे मसले को, वो हल कर देगा, मसले का हल भी उसके पास ही है, तो सब कुछ जो जमीन और आसमान में उसका ही है। अच्छा ये आयतें भूल जाती हैं उस वक्त, उस वक्त इंसान को लगता है ये मुझे देगा, ये शिफा यहां से मिलेगी, औलाद इधर से मिलेगी, मसले का हल इधर से मिलेगा, शौहर की मोहब्बत का वो है वो इधर से मिलेगा, महबूब कदमों में इधर से मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या, और कहीं कहीं के वीजे मिलने हैं, कहीं के पासपोर्ट मिलने हैं, वो भी कहीं से मिलेंगे। सब चीजों के लिए तो आपने कुछ और रख लिया, तो फिर अल्लाह ताला किस लिए। वमा यत्तेबिउल्लदीना यदउना मिन दूनिल्लाहि शुरकाء, अगर इसको पीछे से जोड़ा जाए ना, इसके डिफरेंट मीनिंग्स में आपको बताती हूँ, अगर इसको पीछे से जोड़ा जाए तो फिर बनता है कि अल्लाह ही का जो आसमानों में भी है और जो जमीन में भी है, और जो पैरवी करते हैं, जिनको पुकारते हैं अल्लाह के सिवाय शरीक बना के, वो भी अल्लाह ही के हैं, वो भी अल्लाह ही के मखलूक है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माँ का माना ये लिया जाए कि अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, और वो क्या है जिनकी तुम पैरवी करते हो, जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवा शरीक, वो क्या चीज है, वो कुछ भी नहीं है अल्लाह के आगे। और फिर अगर माँ का माना नहीं कर लिया जाए, माँ नाफिया लिया जाए, तो वो फिर भी क्या बनेगा, और नहीं वो पैरवी करते जो वो पुकारते अल्लाह के सिवा शुरका शरीकों को, यतबीउना इल्ला ज़न, नहीं है वो मगर ज़न, मगर वो गुमान है, नहीं वो पैरवी, जो भी वो जिनकी भी वो पैरवी करती है ना, जिनको भी वो पुकारती है अल्लाह के सिवा शरीक बना के, वो उनकी नहीं पैरवी करते, वो सिर्फ जन है, ये गुमान है जिसके पीछे वो भाग रहे। समझ आई बात? तो ये तीनों तरह से माँ का माना किया जा सकता है, और तीनों ही सही है कि ये कुछ भी नहीं है और ये भी अल्लाह ही की मखलूक है, और ये क्या चीज है जिनकी तुम पैरवी करते हो, जिनके पीछे तुम जाते हो, जिनको तुम पुकारते हो। और पुकारना, मैंने आपको बताया था, दुआ करना किसी से, ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और से को पुकारना ऐसे कि जैसे या अली मदद, ये क्या है, या रसूल अल्लाह मदद, ये क्या है, या खिजर, वो कहते हैं वो खिजर अलैहि सलाम की ड्यूटी पानी पे है, तो कोई तूफान आए तो उनको पुकारो अस्तग़फिरुल्लाह, तो फिर वो गार्डियन एजेंट्स को भी पुकारते हैं। वो कहते हैं वो जो मुशरिक हैं, ये कहते हैं ये जो हमारे गार्डियन एजेंट एंजल है ना, ये जो हमारे साथ फरिश्ते हैं, उनको ही वो मदद के लिए पुकार लेते हैं। तो नहीं, आपने जब दुआ की ना, तो दुआ के पीछे पूरा अकीदा है, दुआ के पीछे जब आप दुआ मांगते हैं तो आपको ये बिलीफ है इसके पीछे कि ये मेरी सुन रहा है, जाहिर सुन रहा है तो आप मांग रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी कि आप दीवार को कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये सुन रहा है, ये जिंदा भी है, ये सुन भी सकता है, और ये मेरी दुआ को कबूल भी करा सकता है या कर सकता है, तो इसके पास ये पावर भी है, चाहे अल्लाह से ही इसने करानी। जैसे वो लोग कहते थे ये हमारे अल्लाह के सामने हमारे सिफारशी है, तो चाहे अगर आपका ये भी अकीदा है कि ये मेरी अल्लाह के सामने रखेगा, मेरी इसके सामने, इसकी अल्लाह के सामने, तब भी शिर्क है। आपने उसको सुनने वाला समझा जबकि वो दुनिया से जा चुका, आपने उसको हाजिर नाजिर समझा, आप यहां बैठे हुए और पुकार रहे हैं या अली मदद, यानी आपको पता है कि फिर इसका मतलब आप ये समझते हैं कि हजरत अली जिंदा है, या हजरत अली यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात। फिर इसके बाद आपने ये भी अकीदा रखा कि उनके पास इतनी पावर है, इतनी कुव्वत है कि अल्लाह से मनवा लें जो मर्जी बात, मैं अल्लाह से कहूंगी तो वो तो नहीं मानेगा, लेकिन ये कहेंगे तो फिर वो मान लेगा, तो इनके पास इतनी पावर है, इतनी कुव्वत है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं, और मैंने आपको कितनी और दफा बताया हुआ है अहादीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। तो आपने उसको कादिर भी माना, उसको सुनने वाला भी माना, उसको जिंदा भी माना, और आपने उसकी उसके आगे अपनी बंदगी का भी इजहार किया, अपनी आजजी का भी इजहार किया, क्योंकि किसी को पुकारना दुआ के लिए, दुआ मांगते वक्त ये इबादत है, आपने किसी की इबादत भी कर ली, तो अब और क्या रह गया फिर, ये तो शिर्क होता है। तो जब आसमान और जमीन में आपने ये, अगर आयत के ऊपर ईमान है, अगर इस आयत पे ईमान है, अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ध, ये पढ़ने के लिए या सिर्फ ऐसे ही गुजर जाने के लिए, या ईमान रखने के लिए? अभी हमने कहा कि जो अल्लाह के औलिया होते हैं वो ईमान वाले होते हैं, मानते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते नहीं है कि पढ़ लिया हाँ अल्लाह का है जो आसमान और जमीन में, उसके बाद जाके मैं धागे कहीं और बांध रही हूँ, ये मुझे देंगे बच्चा, ये मेरी मुश्किल कुशा है, ये मेरी मुश्किलें आसान करेंगे, या गौसे आजम, ए फरियाद रस, गौसे आजम मतलब फरियाद रस, मेरी फरियादों को सुनने वाले, फिर उधर चल पड़ेंगे हम, है वैसे सब अल्लाह का, लेकिन हम जाते उधर मांगने हमने अल्लाह से नहीं, मांगना हमने किसी और से, और क्या ये शिर्क बताएं। आज मिजारों का कारोबार इतना ऐसे ही नहीं चल रहा, अगर ये इन चीजों पे ईमान हो तो कैसे उनका कारोबार चले। ना ये जन है, सिर्फ गुमान है, सिर्फ अटकल पिचू बातें, व इनहुम इल्ला यखरुसून, सिर्फ कयास आराइयां है, जन है और कयास आराइयां, इधर के उधर जोड़ दिए, उधर किधर कहानियां बना ली, भाई उनकी बेस क्या है, उनकी कोई दलील है? अब देखे ना, कुरान की एक दलील है कि ये सच्चा है और ये प्रिजर्व्ड है, ये सेव है, जब से ये उतरा इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। हदीस की दलील है, उसकी चेन्स हैं पीछे पीछे तक जाती है, हमें पता चलती है कौन से रावी ने किससे सुना, किसने किससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे, उसके ऊपर पूरी तहकीक है, कौन किससे मिला था, ये किसने सिर्फ उसका बात सुनी थी, वो किस वक्त पैदा हुआ, किस वक्त फौत हुआ। वो अगर कह रहा है मैंने फलां से सुना, तो क्या वो इस इलाके में गया था, क्या वो उस जमाने में था। इतनी बातें हैं ना उसके ऊपर, इतनी तहकीक हुई भी है कि यानी एक-एक चीज उसकी खोल के निकाल ली गई है, कि रावियों की भी पूरी पूरी जिंदगियां लिखी हुई हैं। अब चलो उसकी दलील मिलती है, कुरान की दलील है, आप मुझे बताएं इन किस्सों की क्या दलील है। वो उसने इन यहाँ पे आके मांगा तो ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या ऐसी कहानियां कि कुछ और ही बना के रख दी, फिर वो खुदा ही बना दिया। तो ये जो सारी कहानी है इनकी कहाँ से दलील है, सिर्फ मुंह की बातें है ना। किसी ने भी कोई आज बैठ के कोई बात घड़ ले, कोई किसी को एक कब्र बना के कह दे कि यहाँ पे तो बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे, वो गुजरे हैं, ये उनकी कब्र है, वो तो जो मांगते थे मिलता था, जिसकी करते थे वो उसकी उनकी दुआएं कबूल होती थी, आए आप भी यहाँ पे करें, 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे। अब कहानी बनाने को क्या, अब मैंने एक कहानी बना दी और साथ 4 झंडियां लगा दी, अब इसकी क्या दलील है, कि कुछ ही नहीं पूछना, 2-4 इधर उधर की बातें भी साथ कहानी में जोड़ दी, जो कि आपको लगे कि बड़ी मेसमराइजिंग है, बड़े आप मुतासर हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारी बातें जानने हैं, कयास हराइया। इसी तरह आप मुशरिकों को देख लें, कहानियां ही कहानियां बनाई हुई, पीछे उनके कुछ नहीं है। अब वो किसी ने कह दिया वो ईसा अलैहि सलाम को सूली पे चढ़ा दिया गया, ऐसे हो गया, फिर उसके बाद कहानी बनाई हुई है, फिर उसके बाद वो मिले, फिर फलां हुआ, फिर वो वापस आए, फिर रेजरेक्शन हुआ, ये कहानियां, फिर राम सीता की कहानियां है ना, उनके पीछे क्या है बताएं, किससे है। बस हु अल्लज़ी जअला लकुम अल्लैला लितस्कुनू फीह वन्नहारा मुबसिरा, जबकि अल्लाह वो जात है जिसने रात और दिन का निजाम बनाया, रात को तुम्हारे लिए सुकून के लिए और दिन को रोशन बनाया ताकि तुम अपने काम काज कर सको। इन्ना फी ज़ालिक लआयात लिक़ौमी यस्मऊन, इसमें आयात है, निशानियां उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। सुनते हैं क्यों कहा यहाँ, इसलिए कि वैसे तो तुम्हें देख के ही ये सब चीज पता चल जाती, अगर देख के नहीं पता चलती तो सुन ही लो, सुन के ही किसी को इंसान को कुछ समझ आ जाती बात, सुनना भी नहीं अगर देखने में, तो वैसे ही अंधे बने हुए हैं, रोज रात और दिन को देख रहे हैं, कुछ निशानी नजर नहीं आती, तो ना देखना है और ना सुनना है। वो सुनेगा कोई तो उसको कोई समझ आएगी बात, निशानी पता चलती है, गौर व फिक्र करे फिर उसके बाद। तो बहुत सारे सबक है इसके अंदर, किसने रात बनाई, किसने दिन बनाया, वो कैसा होगा जिसने रात और दिन बनाया, उसकी ताकत कैसी होगी, उसकी कुदरत कैसी होगी, ये निजाम कैसे इतना बैलेंस्ड चल रहा है और सदियों से चल रहा है। क्या किसी बुजुर्ग ने बनाया, किसी बुत ने बनाया, किसी देवी देवता ने बनाया, किसने किया ये। और याद रखिए कुराने पाक जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं दलाइल देता, ये नहीं बात बताता कि एक कोई हस्ती है जो खुदा है, एक कोई जात है जो खुदा है। कुराने पाक ये दलाइल देता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था, तौहीदे अलूहियत, अलूहियत में इबादत में तौहीद, कि सिर्फ वो ही है, एक ये बात बताता है हमें कि अल्लाह ही है सिर्फ, और जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाए, और दूसरे वो अकेला है। क्योंकि ये चीज को साबित करना, अभी ये मेरी बात जरा गौर से सुन लें, ये चीज को साबित करना कि एक खुदा है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, इसलिए क्योंकि ये हमारे अंदर बिल्ट इन है, बाय डिफॉल्ट है हमारे अंदर, हम पैदा इसके साथ हुए होते हैं कि एक कोई खुदा है, कोई ना कोई हस्ती है, कोई पावर है। कुरान बताता है, हमें दलाइल देता है कि उसी की इबादत करो, और वो अकेला है, उसके साथ और नहीं है, उसके कोई शरीक नहीं है, इस चीज के ऊपर हमें बताता है, दलाइल देता है। अब अगर हम किसी को मनवाने लगे हैं ना, तो उसको ये मनवा लेने में कोई कमाल नहीं है कि एक खुदा है कोई, या एक छोड़े कोई खुदा है। हमारा ज्यादा जोर इसके ऊपर रहता है, और बहुत सारे लोगों का इस पे रहा है कि बस वो ये किसी को मनवा लें कि खुदा है, एक हस्ती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर कोई जन्नत में नहीं जाएगा कि कोई खुदा है, क्योंकि ये बात तो हिंदू भी मानता है, वो भी कहता है कि ये बोलता है, लेकिन कोई खुदा है इससे ऊपर। बात ये है अलूहियत इबादत की जब बात आ जाती है, और बात ये कि जब तौहीद की बात आ जाती है कि वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, उसके कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई जो उसने अपनी पावर्स इसको भी दे दी है, थोड़ी सी इसको भी दे दी है। वो कहते हैं ऊपर तो एक ही है, उसने इनको पावर्स दी है, नहीं, उसके पास ही सारी पावर्स हैं, सब उसके बंदे हैं, उसकी मखलूक है, और इबादत के लायक सिर्फ वो है। ये है चीज जो हमें रीएनफोर्स करने की जरूरत होती है। हाँ, बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान की जो बिल्ट इन चीज है ना, बिल्ट इन जो कॉन्सेप्ट जिसके साथ इंसान पैदा हुआ है, उसके ऊपर गर्द पड़ जाती है, उसके ऊपर गफलतें आ जाती हैं, उसके ऊपर दुनिया की और चीजों के इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो उस चीज को भूल जाता है। इसीलिए कुरान तज़कीर करता है, उस गर्द व गुबार को हटाता है, और वो ओरिजिनल चीज अंदर से निकालता है जो हमारे अंदर है। तो ये याद दिहानी कराता है, ये नहीं कर रहा कि आपको ये बताए कि कोई हस्ती है, वो तो इंसान को पता है कि कोई हस्ती है, ऐसे ही तो नहीं, वो हर इंसान ने कोई ना कोई खुदा बनाया। इवन जो एथिस्ट है वो भी नेचर को कहता है कि वो खुदा है। तो ये बात बस समझने की थी। قال اتخذ الله ولدا سبحانه قال اتخذ الله ولدا, वो कहते हैं कि अल्लाह ने एक बेटा बना लिया या औलाद बना लिया, वलद में औलाद आ गई सारी, किसी ने बेटा कहा, किसी ने बेटियां कह दिया, सुबहानहू, वो पाक है, इससे उसको बेटे की क्या जरूरत, हुवल गनी, वो तो बेनियाज है, वो किसी चीज का भी मोहताज नहीं है। बेटे की तो मोहताजी होती है किसी को कि बेटा उसकी कोई आगे ममलिकत संभाले, कोई बादशाह है तो बेटा उसका जानशीन बने, वो क्या, वो तो हई और कयूम है, उसको बेटे की क्या जरूरत। इसी तरह बेटे की उसको जरूरत है जिसका कोई बुढ़ापा आए तो वो कहे मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं, उसके अंदर कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं। औलाद की जरूरत उसको होती जिसमें कमी हो, वो खुद सरवाइव नहीं कर सकता, वो खुद फिर अपनी जरूरियात नहीं पूरी कर सकता, तो उसको औलाद की जरूरत है कि बेटे बेटियां होंगे तो मेरे काम आएंगे, तो मेरी आगे या नस्ल चलेगी, इसलिए इंसान लेता है ना, या मेरे बाजू बनेंगे, या मेरे घर की रौनक बनेंगे, या मेरी एक जरूरत है। उसको जरूरत नहीं, ना उसको बाजू चाहिए, ना उसको किसी चीज की एहतियाज है, वो तो खुद हर चीज का इख्तियार रखता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, उसके पास तो उसका तो सब कुछ ही है, जो आसमानों और जमीन में, सबकी मिल्कियत उसकी है, सबका इख्तियार उसके पास है। इन इंदकुम मिन सुल्तान बिहाजा, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है इसकी, या नहीं तुम्हारे पास कोई दलील उसकी, दोनों ही माने, नहीं तुम्हारे पास कोई दलील इसकी, इसकी तुम्हारे पास कहीं कायनात में आप देख लें कोई दलील नहीं। कोई पैगंबर ऐसा हो जिसने आके कहा हो ऐसी बात कि उसकी कोई औलाद है, या किसी पैगंबर ने ये कहा कि मैं उसका बेटा हूं, कहीं पे भी नहीं। कौन सी ऐसी किताब होगी जो आसमान से आई जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह की कोई औलाद है, तो कहीं से कोई सबूत मिलता ही नहीं। अतकुलून अल्लाह ही मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह पे वो बातें करते हो जो तुम नहीं जानते। और याद रखे, ये वाली बातें पता है कौन कहलवाता है, पहले हमने पढ़ा था गालिबन सूरह बकरा में, कि शैतान कहता है कि अल्लाह के ऊपर वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते, ये शैतान कहलवाता है। कभी कहता है अच्छा बताओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान आके कहता है अच्छा बताओ फलां चीज किसने बनाई, वो कहता है अल्लाह ने, वो किसने बनाया, वो अल्लाह ने, वो किसने बनाया, वो अल्लाह ने, जब कर करके ऐसे फिर कहता है और अल्लाह को किसने बनाया, तो समझ लेना कि ये शैतान है, वो तुमसे वो बातें कहलवाता है जो तुम नहीं जानते, बगैर इल्म के। फिर इंसान सोचने शुरू जाता है इस पे, तो इंसान मुंह से वो बातें ना निकाले जिसको कोई, उसको इल्म नहीं है, फिर भी वो उसके ऊपर तबसरे करने लगता है, फिर वो जहालत के बिना पे बात करता है, और ये भी जहालत है ना, बगैर इल्म की बात है कि उसकी कोई औलाद है। क्या सबूत है भाई तुम्हारे पास? कोई सबूत ही नहीं। और मैंने आपको पहले बताया था ना कि हदीसे कुदसी है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, और उसका गाली देना ये है कि वो मेरी औलाद ठहराता है। कुल कह दीजिए इन लदीना यफ्तरून अल्लाह कदीबा ला युफलिहून, कह दीजिए वो लोग जो अल्लाह के ऊपर झूठ घड़ते हैं वो कभी फला नहीं पाएंगे। ये झूठ घड़ना है, क्योंकि ये इफ्तरा क्या होता है, जो खुद ही बनाई हुई बातें, मन घड़त बातें, खुद साहता बातें, इनकी कोई बेस नहीं है, उनका कोई सबूत नहीं है। लेकिन इंसान को भी कोई कह दे ना, कोई उसका औलाद, कोई उसका बच्चा नहीं है, और कहते ये इसका बच्चा है, तो वो भी बुरा मानता है कि तुमने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। हालांकि हम तो इंसान है, हमारी औलाद तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर इतनी बड़ी बात कह देना, ये ऐसी बात है कि अगर आसमानों को ये बात आसमानों तक पहुंचे तो आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ये इतनी बुरी बात है अल्लाह ताला की औलाद ठहराना। तो ये लोग जो ऐसी झूठी बातें घड़ते हैं ना, ये फला नहीं पाएंगे ना दुनिया में ना आखरत में, इनकी कोई सर्वेशन नहीं है। मताउन फिर दुनिया, दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा हो सकता है उठा ले, थोड़ा फायदा इनको मिल जाए, यानी दुनिया में कुछ ऐशो इशरत मिल जाएगा, कोई लोग फॉलोइंग करने लगेंगे, कोई लोग बड़ा समझने लगेंगे, कोई पैसा मिल जाएगा ऐसी झूठी बातें बना बना के करने से, ऐसे शोला बयानी से लोग कोई मुरीद बन जाएंगे, कोई उनके खिदमतें करेंगे, चलो लेकिन कितनी देर होगा, ये चंद दिन का फायदा है, उठा लें फिर ये फायदा। सुम्मा इलैना मर्जिहुम, फिर हमारी तरफ लौटना है उनका, सुम्मा नुदीकुहुम अलआज़ाब अश्शदीद, फिर हम चखाएंगे इनको शदीद अजाब, इस वजह से अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से कि वो कुफर करते थे। इसको कुफर कहा गया अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने को। देखिए मैं और आप जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह की कायनात में, हमारे ऊपर कोई झूठ बांधे तो हम उसे लड़ने खड़े हो जाते कि तुमने मेरे ऊपर ऐसी बात कैसे कह दी, मैंने तो ये कहा ही नहीं था। और कहाँ रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के ऊपर झूठ बांधना कि जो बात उसने ना कही, ना उसने कहा ये मेरी औलाद है, ना उसने वो काम कहे, ना उसने वो बातें कही, अल्लाह के ऊपर वो बातें लगा देना झूठ घड़ घड़ के अपनी तरफ से, पता है कि कितना बड़ा जुर्म है ये। और इसके बाद ये जो, क्योंकि यहाँ पे अभी शिर्क की बात हो रही है, अल्लाह के औलाद ठहराने की बात और इस तरह के लोगों की बात जिन्होंने ऐसे ही शिर्क किए और उनका अंजाम, तो इसके बाद उस कौम का सबसे पहले जिक्र किया गया जिनसे शिर्क शुरू हुआ था। अब वो पता है जब आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में, बल्कि उनके बाद भी कहा जाता है 10 जमानों तक, यानी 1000 साल तक, 10 सदियों तक कोई शिर्क नहीं था, इसके बाद शिर्क शुरू हुआ और तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया। तो यहां से अब इस सूरत में अंबिया के किस्से शुरू हो रहे हैं, और इन किस्सों को बताने की वजह क्या है? सबसे पहली एक वजह तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को तसल्ली देना कि ये आपके साथ सिर्फ नहीं हो रहा, ये पिछले नबियों के साथ भी ऐसा ही होता रहा, और आपके सहाबा को भी ये तसल्ली देना कि देखो आपको ही नहीं सताया जा रहा, अंबिया को तक को सताया गया, उनका इनकार किया गया, उनकी मुखालफत की गई, बावजूद इसके कि वो तो मौजज़े लेकर आए थे, साफ शफाफ मौजज़े वाज़े दलाइल लेकर आए, फिर भी नहीं लोग माने। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, लोगों की पहले भी आदत है। और फिर उसके बाद उनको तसल्ली देना कि देखो फिर उसके बाद जीत किसकी हुई, कामयाबी किसको मिली, और कुफार को वार्निंग दे देना इन किस्सों से कि वो इन किस्सों से ये इबरत लें कि जो नबियों की मुखालफत करते हैं फिर उनका हाल क्या होता है, वो जलील और रुसवाई होते हैं और अजाब का शिकार होते हैं। ये बताना जरूरी था, ये लोगों तक पहुंचाया गया इन किस्सों के जरिए। तो अब यहां पे देखें कि नूह अलैहिस्सलाम की बात कही कि वतलू अलैहिम, आप तिलावत करके पढ़ के सुना दें, ए नबी आप पढ़ के सुना दें इन पर, यानी इन लोगों को पढ़ के सुना दें क्या नबा नूह अलैहिस्सलाम की खबर। इज कौला लिकौमी, जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, या कौमी ए मेरी कौम, नबी जो होते ना बड़े ही खैर ख्वाह होते थे अपनी कौमों के, पर उनको इतनी शफकत उनकी बातों में भी झलकती थी कि हालांकि कौम काफिर है, ऐसे नहीं है कि कोई मोमिन मुत्तकीन को नहीं कह रहा है या कौम, ये काफिर मुशरिक कौम है, फिर भी कहते हैं मेरी कौम। यानी आपको पता चलता है कि जब आप दावा का काम करने लगते हैं ना, तो लोगों के साथ नफरतें करने से काम नहीं होगा, ये लोगों के साथ शफकत के साथ, लोगों के साथ खैरख्वाही के जज्बे के साथ आप काम करेंगे तो तब उन तक आपकी बात पहुंचेगी। तो या कौमी ए मेरी कौम, इनका न कबुर अलैकुम, अगर है तुम्हारे पर भारी मकामी, मेरा खड़ा करना, मेरा खड़ा होना, यानी मैं तो तुम्हें जो तबलीग करता हूँ, जो दावत दे रहा हूँ, वो तुम्हारे ऊपर भारी है, गरां गजर गुजर रहा है तुम पे, मेरा रिमाइंडर देना, मेरा तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाना तुम्हें बड़ी मुसीबत लग रहा है। और वाकई कई लोगों को ये बात भी गरां गुजरती है, उनके ऊपर ऐसे भारी हो जाती है जैसे उनके ऊपर भारी पत्थर रख दिया, या हमें क्यों बता रही है बातें, हमें क्यों अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है, उनके लिए एक बोझ होती है। और मेरा खड़ा होना और मेरा नसीहत करना अल्लाह की आयात के साथ, वो भी अल्लाह की आयात के जरिए इसका मतलब तबलीग करते थे कि अल्लाह की आयात के साथ मेरा नसीहत करना तुम पे भारी होता है और मेरा खड़ा होना तुम पे भारी होता है। तो फअलल्लाह ही तवक्कल, तो आगे ये नहीं कहा तो फिर मैं नहीं करता, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है मेरा वजूद, मेरा बुलाना तुम्हें अल्लाह की तरफ, तो फिर मैं ठीक है नहीं बुलाता, ये नहीं कहा उन्होंने। आगे से देखे अंबिया कैसे डट के खड़े होते थे, फअलल्लाह ही तवक्कल, तो अल्लाह पे मेरा भरोसा है, फिर तुम ऐसा करो, तुम कुछ करो, मैंने तो हटना नहीं है, फिर तुम ऐसा करो, तुम अजमियाऊ अमरकुम, तुम जमा कर लो अपना काम, यानी तुम मिलके एक फैसला कर लो, इकट्ठे होके जमा कर लो, यानी मिलके जमा होके कोई इकट्ठे होके कोई तदबीर कर लो, कोई फैसला कर लो मेरे बारे में, और शुरकाकुम, और अपने शरीकों को भी साथ मिला लो, उनको भी साथ शामिल कर लो, उनको भी जमा कर लो और प्लानिंग कर लो मेरे बारे में। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन, फिर ना हो फैसला तुम्हारा तुम पर मख्फी, यानी बिल्कुल एक पेज पे आ जाओ, कोई चीज की कंफ्यूजन ना रहे, सब बिल्कुल क्लियर हो, कोई चीज छुपी भी ना रहे, बिल्कुल अच्छी एक प्लानिंग कर ली, बिल्कुल फैसला कर लिया, क्लियर फैसला, क्लियर जहन के साथ फैसला कर लिया, सुम मकदू इलैया, फिर कर गुजरो मेरी तरफ, वला तुम जिरून, और ना तुम मोहलत देना मुझको, मुझे मोहलत भी ना देना कि मैं कुछ अपनी कोई तैयारी करूं, कोई अपने लश्कर तैयार करूं, कोई मोहलत ना देना मेरे साथ, फिर जो करना है तुमने कर लो, तुम मकदू ही लैया का मतलब क्या, जो करना कर लो मेरे बारे में। कितना खुला चैलेंज है, ये चैलेंज वही दे सकता है जिसके दिल के अंदर तौहीद रासे हो, वरना अक्सर लोग क्या होते हैं, वो तो डर ही जाते हैं, अगर कोई कहे आए अगर आपने ऐसी बात कही तो ये बुजुर्ग आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके बच्चे मर जाएंगे, आपके कारोबार तबाह हो जाएगा, देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तो वो खातून फौरन डर जाती, हाय हाय कहीं मुझे इनके कुछ लग ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं की बद्दुआ ना लग जाए, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो तो नहीं कह रहे तुम्हारी बद्दुआ ना लग जाए, मुशरिक है वो लोग, और उनको ये बात कहनी कि ये बहुत, यानी इनका ईमान कितना मजबूत होगा कि आई डोंट केयर, कुछ करना है करो, बद्दुआएं देनी है, मेरा कुछ बिगाड़ना है, मुझे कत्ल करना है, जो मेरे खिलाफ करना है करो, मेरा कोई नुकसान करना है, मेरी कोई तबाही के प्लान बनाने हैं, वो अच्छी तरह बनाओ, सारे मिलके बना लो, वो सारों को अपने शरीकों को भी साथ मिला लो, जिनको तुम खुदा समझते हो ना, तो मेरा कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ो, समझ आई बात? मेरा जो बिगाड़ना है, मेरे साथ जो करना है करो, आप मुझे मोहलत भी ना देना। तो हम क्यों फिर डर जाते हैं ऐसी बातों पे आके? हम क्यों को किसी की बद्दुआ से डर जाते हैं? भाई आप उनको तौहीद की बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम तबाह हो जाओगे, तुम अगर इनको बुरा कहोगे तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम इनको गलत ना कहो वरना तुम्हारा पता नहीं दुनिया तो आखिरत खराब हो जाएगी। तो इतने डरने की क्या बात होती है? क्या है? हम समझते हैं वाकई कि उनके हाथ में इतनी ताकत है? क्या हम समझते हैं वाकई कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? क्या हम समझते हैं वाकई कि उनके भी खुदा के साथ कुछ अल्लाह ताला की इख्तियार में वो भी शरीक है, उसकी बादशाहत में वो भी शरीक है? पर समझते हैं तो फिर किस चीज का पैगाम दे रहे हैं? फिर तौहीद का क्या चर्चा कर रहे हैं? आप तो खुद ही फिर आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं। ये होती है स्ट्रांग बेस, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही इसी तरह का चैलेंज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दिया था, उन्होंने भी कहा था कि मुझे मैं डरता नहीं हूं तुम्हारे शरीकों से, जो करना कर लो। और ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत का आखिरी मोड़ था, यानी बहुत समझा चुके थे। और आपको पता है हम आगे इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अल्लाह ने तौफीक दी तो सूरह नूह पे जब पहुंचेंगे तो फिर 29 जुज में तो पूरी सूरत ही नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग, और इस बारे में आप पढ़ना चाहें तो वहां से आप पूरी इनकी तबलीग के पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। फैन तबल्लई तुम, फिर अगर मुंह फेरा तुमने, फमा साल तो कुम्मिन अजर, फिर अगर तुम नहीं पसंद करते मेरे बताने को तो मैं कौन सा तुमसे कुछ मांग रहा हूं कि तुम्हें कुछ मुझे देना पड़ रहा है कि जिसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो। इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है। पहले भी सूरह आराफ में भी पढ़ चुके हैं कि पैगंबर जो थे ना वो लोगों को तबलीग करते थे लेकिन उनसे कुछ मांगते नहीं थे। हाँ हमेशा ये कहते थे हमारा अजर तो अल्लाह के पास है, हमने तुमसे कुछ लेना ही नहीं। वह उमिर तो अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मैं तो हुक्म दिया गया हूं कि मैं मुसलमानों में से हो जाऊं। मुस्लिम उस वक्त भी मुस्लिम थे, ये नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। जी हाँ, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है शुरू से। तो बाद में लोगों ने अपने अपने अदियान के और नाम रख लिए, वरना जो अल्लाह की तरफ से दीन आया वो इस्लाम ही था। इस वो फिर यहूदी बन गया, फिर कोई ईसाई बन गया। और इस्लाम का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, अपनी विल को सरेंडर कर देना, मुती हो जाना, इताद गुजारी, मुकम्मल सबमिशन, फरमा बरदारी, और तभी इंसान सलामत रह सकता है, पीस में आ सकता है।